स्थित प्रज्ञ के लक्षण देख रहे थे। चार प्रश्नों में से हम लोगों ने तीन प्रश्नों का उत्तर देख लिया। चौथे का हम लोग का किम ब्रजेत की चर्चा चल रही थी। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विषयों के चिंतन को सब अनर्थों का मूल बतलाया गया है। हम लोग देख रहे थे ना, ध्याय तो विषयान पुंसा, कैसे हम गिर जाते हैं, बुद्धि का नाश हो जाता है। तो मूल कारण क्या है? बोले विषय है। विषय का चिंतन जो है मूल कारण है। अब यह मोक्ष का साधन बतलाया जाता है, कैसे हम मुक्त होंगे। तो 64वें श्लोक के अंदर बताया गया, राग देश वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम, आपको प्रसन्नता मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? तो बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम करना है। राग द्वेष विमुक्त, राग और द्वेष से विमुक्त होना है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर जाना है। विषयान इंद्रिय चरण, और विषयों में आप चरण करो, राग और द्वेष ना हो तो विषयों में चरण करो, कुछ नहीं होगा। कहते हैं आत्मवश्य ही, और आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो इस ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं विधेय आत्मा। विधेय आत्मा का मतलब है ऐसा अंतःकरण जो आज्ञाकारी है। हमारा अंतःकरण अभी आज्ञाकारी नहीं है, हम अंतःकरण के आज्ञा में चलते हैं, मन जो कहता है वो करते हैं। मगर अगर आपने ऐसे किया, राग द्वेष वियुक्ति अगर आपने शुरू कर दिया, आप इंद्रियों में जा सकते हो। देखो इसमें क्या समझने की बात है, इसमें ये है कि कर्म प्रभु परायण हो, रुचि परायण ना हो। कर्म जो है प्रभु परायण हो, प्रभु के लिए हो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, रुचि परायण ना हो। रुचि हमारे लाइक डिसलाइक की तरह ना हो, तो फिर कर्म हम कैसे करें? कहते हैं कि कर्म अगर आपको करना है, नंबर वन विवेक कीजिए, नंबर टू कर्तव्य परायण होके कीजिए, और तीसरा ईश्वर प्रत्यर्थ हो। तीन चीजें याद रखनी है। विवेक करो, क्या विवेक करें, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? विवेक करो, आपके पास एक मकान है, अब आप संकल्प आ गया एक और मकान लेना है। विवेक करो, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना विवेक के आपने सेकंड मकान बना लिया, फिर आप जानते क्या होता है, फिर वैक्यूम क्लीनर लेकर रही बार वहीं जाते रहते हैं देखने के लिए। होता नहीं है, हमने भी ऐसी गलती की है। हम लोग एक जगह रहते थे, फिर हमने सोचा कि एक जो है आउटस्कर्ट में जमीन ले लेते हैं। हमने एक बड़ी जमीन खरीद ली, तो पहले पहले तो हर रविवार दौड़ते थे देखने के लिए जमीन को, फिर बोले कि नहीं एक हफ्ता बाद चलते हैं, 15 दिन के बाद, फिर 1 महीने बाद, देखो 6 महीने नहीं गए। जब 6 महीने नहीं गए तो वहां देखे लोगों ने अपनी झोपड़ियां बना ली। फिर समझ में आया कि देखो ये इसलिए कहते हैं, विवेक किया था, तुम यहां कलकत्ते में रहोगे कि आउटस्कर्ट में रहोगे, हम सोच रहे थे कि एक जो है फार्म हाउस बनाएंगे। लो और ईश्वर प्रीत्यर्थ हो ऐसा इसमें कहा गया है। ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित और अपने बस में की हुई श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता है, अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता है। लोग जो है ये सोचना रखते हैं कि अरे तो संत हो गए, इनको तो खाना भी नहीं चाहिए, ऐसा सोचते हैं। ये चलेंगे पैदल चलेंगे तो इनको चप्पल नहीं दे पहनना चाहिए, ऐसा सोचने लग जाते हैं। और शंकराचार्य जी लिखते हैं, अनिवार्य विषयों का ग्रहण करता हुआ प्रसाद को प्राप्त करता है। ऐसा करते हुए राग द्वेष वियुक्त ही अगर आप करते जाओ ना तो आप प्रसन्नता को पा जाओगे, क्योंकि आप ईश्वर को अर्पित करके काम कर रहे हो, कर्तव्य परायण के हिसाब से कर रहे हो। कर्तव्य माय ड्यूटी आपको करना है, हमारा इसमें लाइक एंड डिसलाइक नहीं है। अगर ये भाव अगर आपके आ गया, विवेक आपने किया, तो ये आपको प्रसन्नता की तरफ ले जाएगा, प्रसन्नता की तरफ ले जाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा। मोक्ष की तरफ मतलब ले जाएगा ना, आनंद आपको मिलेगा, अल्टीमेटली आप वहां पहुंच जाओगे। फिर ऐसा मिलने से क्या होते हैं, उस प्रसन्नता की स्तुति कर रहे हैं हम, भगवान स्तुति करते हैं कि ये प्रसन्नता अगर आपको मिल जाएगी तो क्या होगा। कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि हानिरस्योपजायते। प्रसाद, ये प्रसाद, ये प्रसन्नता मिलने से क्या होगा, सर्व दुखा नाम, सर्व दुखा नाम, शंकराचार्य जी दुख की जगह पर लिखते हैं अध्यात्मिका आदि नाम। कोई मतलब बताएगा अध्यात्मिका आदि के नाम का मतलब क्या है? दुख, दुख का एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने एक वर्ड लिख दिया और आपको बाकी 2 वर्ड बताने हैं। आप लोगों को सबको आता है अध्यात्मिका आदि, हाँ आदि दैविक, हाँ आध्यात्मिक। तो शंकराचार्य जी ने एक वर्ड लिख दिया। तो ये तीनों किस्म के ताप, सारे सर्व दुखा नाम, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख जो है ये खत्म हो जाएंगे। हानि, हानि मतलब खत्म हो जाएंगे। प्रसन्न चेसो यासु बुद्धि परिवर्तिष्यते। और ऐसी बुद्धि जो प्रसन्न है वो क्या होती है, बोले ये उसके अंदर में बैठ गई है, जिसको कहते हैं ना अबाइडेंस इन सेल्फ, वैसा जो है आप उसके अंदर में बैठ जाओगे। शंकराचार्य जी कहते हैं केवल आत्म रूप से निश्चल हो जाती है। अब बुद्धि निश्चल हो गई, अब दौड़ती नहीं इधर उधर। जब आपको एक बार प्रसन्नता मिल गई, सुख मिल गया, उसके बाद आप कहां छोड़ो, नहीं दौड़ोगे ना। छोटी छोटी है सुख के लिए अब आप नहीं दौड़ोगे, क्योंकि बड़ा सुख मिल गया। आपके पॉकेट में अगर $1 trillion हो और रास्ते में अगर $1 बिल पड़ा हो, आप उठाओगे? $1 trillion पॉकेट है, उसमें भरा हुआ है, इतना सुख है हमारे पास में, फिर वो $1 नहीं उठाओगे। उसी तरह से जिसको ये प्रसन्नता मिल गई ना, फिर वो छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे नहीं छूटता। छोटी छोटी वस्तुओं का मतलब ये नहीं समझ लेना कि वो खाएगा पिएगा नहीं, बड़ी गलती बात हो जाती है यहां पर आके सबना। वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ने का मतलब है कि ही इज नॉट डिपेंडेंट फॉर हिज हैप्पीनेस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सुख हमको देंगे ये उसको अच्छी तरह से पता है कि ये नहीं दुख देंगे, सुख नहीं देंगे। अल्टीमेटली सारे विषय हमको दुख देंगे। हमारी क्या समझ है, हमारी ये समझ है कि हमको विषय सुख देंगे। एक गाड़ी है सुख दे रही है, 2 गाड़ी ज्यादा सुख देगी ऐसा हम सोचते हैं, 2 मकान हमको ज्यादा सुख देंगे ऐसा हम सोचते हैं। कर लेने के बाद में फिर सोचते कि नहीं नहीं हुआ नहीं, तो डबल सुख नहीं हुआ। इसके बाद 66वें श्लोक में कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। बुद्धि यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मस्वरूपा विषया बुद्धि, जिसके पास में जो अयुक्त है, जिसने इस किस्म से काम शुरू नहीं किया, राग द्वेष वियुक्त नहीं हुआ, उसको क्या कहते हैं? अयुक्त। बोलते उसका बुद्धि नहीं है। लो तो हम लोग क्या हैं? युक्त हैं, अयुक्त हैं? तो भगवान कहते हैं न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं? हम तो सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। अब भगवान कहते हैं तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं भगवान? आत्मस्वरूप विषया, आत्मस्वरूप को जानने वाली बुद्धि एक दूसरी होती है। जगत के अंदर आप सक्सेसफुल होने वाली एक बुद्धि वो दूसरी होती है। जो जगत में सक्सेसफुल प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है, उसका यह मतलब नहीं हो गया कि उसको आत्म विषय मिल जाएगा पट से। ऐसा नहीं होता है। वहां सक्सेसफुल है, इधर भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भगवान कहते हैं उसके पास बुद्धि नहीं है। कौन सी बुद्धि नहीं है? आत्म को जानने वाली बुद्धि नहीं है। न चयुक्तस्य भावना, उस बुद्धि का मतलब है कि उसको श्रवण करने का अभी तक अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अभी भी श्रवण नहीं हुआ, जिसका माइंड प्योरीफाई नहीं हुआ, श्रवण के पहले क्या करना पड़ता है? श्रवण के पहले मन की शुद्धि चाहिए। मन शुद्धि कैसे होगा? कर्मयोग से। वो सब तो कुछ हुआ नहीं, मन शुद्ध नहीं हुआ। मन अगर शुद्ध नहीं होगा तो श्रवण करने से काम नहीं होगा। तो कहते हैं ना अस्ति बुद्धि अयुक्त से, न च अयुक्त से भावना। बोलते उसके तो फीलिंग भी नहीं है। फीलिंग का मतलब क्या है? फीलिंग का यहां मतलब होता है, देखो ये सब बड़ी गूढ़ बातें हैं, अगर श्रवण नहीं हुआ तो मनन नहीं होगा, ये हुआ यहां मतलब। भावना का मतलब मनन नहीं हुआ। आपने श्रवण ही नहीं किया तो मनन किस पर करोगे? मनन नहीं होगा। फिर कहते हैं न च अभाव है तो शांति। जिसने मनन नहीं किया उसको फिर शांति कैसे मिलेगी? जिसने श्रवण किया, उसके ऊपर मनन किया, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान किया, ध्यान करने के बाद में उसने अपने को जान लिया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, तब उसको शांति मिलेगी। जिसने श्रवण मनन नहीं किया तो उसको क्या शांति मिलेगी? फिर कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको फिर सुख कहां से मिलेगा? अशांत को सुख नहीं मिलता है। फिर भगवान सावधान करते हैं कि अयुक्त तो पुरुषों में बुद्धि क्यों नहीं होती, इस पर कहते हैं अयुक्त तो पुरुषों में बुद्धि क्यों नहीं होती है? इंद्रियाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। बोले उन इंद्रियां खुली हुई है, हमने देखा है एक एक इंद्रिय अगर कंट्रोल ना हो तो मृत्यु का कारण बन जाती है। हमारी तो 5 ज्ञान इंद्रियां खुली हुई हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो बोलते इंद्रियां जब बाहर देखती हैं या सुनती हैं तो मन क्या है? मन उसके पीछे भागता है, इंद्रियों के साथ बाहर चला गया। फिर कहते हैं तदस्य हरती प्रज्ञाम। बोले उसकी प्रज्ञा चली गई। देखो अब बुद्धिमान पुरुष की भी प्रज्ञा चली जाती है। प्रज्ञा मतलब क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं आप अनात्म विवेक जाम नाशयति। आप बहुत दिन तक श्रवण करते रहे, सुनते रहे, आत्मा अनात्मा का हमको विवेक करना है, किया भी बहुत दिन तक, वैसी प्रज्ञा बन गई, मगर इंद्रियों ने आपको आपके मन को घेर के ऐसी जगह जाके डाल के आपको गिरा दिया, तो आपकी बुद्धि नाश हो गई। प्रज्ञा वायुर नाव एवं आम्भसी, जैसे वायु जो है किसी नौका को उसके पद से हटा के डुबा देती, गुरमा देती है। तो इतना तक हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था।
तस्मादस्य महाबाहो,
तस्मादस्य महाबाहो,
निगृहीतानि सर्वशः,
निगृहीतानि सर्वशः,
इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः,
इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
तस्मादस्य महाबाहो, निगृहीतानि सर्वशः,
इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
अब ये देखो चौथे प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ खत्म होता है। क्योंकि यहां पर शुरू कर रहे हैं तस्मात देयरफॉर, ये कंक्लूजन है। तस्मात क्या करना है, यस्य महाबाहो निगृहितानि सर्वश इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने इंद्रियों पर निग्रह किया, देखो शुरू कहां से हुआ था, राग द्वेष वियुक्त से शुरू किया था कि आपको कर्तव्य कर्म करने हैं, विवेक करना है, ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म होना चाहिए, राग द्वेष वियुक्त होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, प्रसन्नता मिलेगी, उस प्रसन्नता से क्या होगा, दुख की हानि होगी। दुख की हानि मतलब तीन किस्म के दुख की हानि हो जाएगी, आदि दैविक भौतिक और आध्यात्मिक, तीन जगह से ही दुख आते हैं। अगर तीनों की हानि हो गई फिर खत्म हो गया, जीवन में और दुख नहीं है। इसलिए कहते हैं तस्मात यस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वश, अगर जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो उसको क्या मिलेगा, उसको श्रवण भी हो जाएगा, उसको मनन भी हो जाएगा, उसका ज्ञान भी हो जाएगा, सब कुछ उसका होगा। अच्छा, अयुक्त को ज्ञान क्यों नहीं मिलता है, युक्त को मिलता है, अयुक्त क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है इसलिए नहीं मिलता है। देखो भाई, इंद्रियों पर संयम करोगे तब तो श्रवण का समय मिलेगा, आपको तो समय ही नहीं मिलता है। समय कैसे निकालें, जब संयम करेंगे तब तो निकलेगा ना, इसलिए कंट्रोल तो जरूरी है। बिना कंट्रोल के, बिना संयम के समय अगर नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा। तस्मात महाबाहो निगृहतानि सर्वश, और अयुक्त जो है चूंकि इंद्रियों का संयम नहीं कर पाता है इस वास्ते उसको ज्ञान नहीं मिलता है। तो इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है, बहुत साइंटिफिक तरीका है। आप 16 घंटे केवल ओईटी में घूमते रहो, संसार में घूमते रहो, थोड़ा कट करो उसको, समय निकालो। अच्छा समय निकाल लिया, अब ताश खेलते हैं, टीवी देखते हैं, हैं? फिल्म फेयर पढ़ते हैं, लो ऐसे नहीं, काट के फिर इधर आना होगा, दूसरी तरफ चलना होगा, अध्यात्म पुस्तक पढ़नी होगी, तब तो होगा। इसलिए अयुक्त को नहीं मिलता है। इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसने इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से हटाना शुरू किया। इंद्रियों के विषय के कौन कौन है, पांच हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो सब आता है आप लोगों को। संयमित करना होगा, जिसने संयमित कर लिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, भगवान कहते हैं कि उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अब आप पूछोगे कैसे संयम करें, तो भगवान आगे बता चुके हैं, यदा संगर्ते चायम कुर्मांगानी वे सर्वश, कुर्मांगानी जैसे टॉर्टेज क्या करता है, जैसे ही उसने खतरा देखा अपने सारे लिम को खींच लेता है। तो जैसे ही आप संसार में जाते हो, आपको खतरा नजर आए तो स्थित प्रज्ञ तो खींच लेता अपने आप को, मगर अयुक्त पर्सन जिसने संयम नहीं किया वो फंस जाता है। अब अर्जुन सोच रहा था क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कभी स्थित प्रज्ञ बन पाऊंगा। भगवान कहते हैं महाबाहो, अरे अर्जुन तुम तो महाबाहो हो, तुम नहीं कर पाओगे तो और कौन करेगा। अर्जुन की प्रशंसा कर दी थोड़ी सी। देखो आपको जब घर में बच्चों से काम करवाना होता है ना, तो क्या करते हो, थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हो, अरे बेटा तुम तो बहुत आज्ञाकारी हो। अब बच्चा खुश हो गया, जाओ एक गिलास पानी लाओ, अब वो दौड़ के लेके आता है। तो इसी तरह भगवान उसकी प्रशंसा कर देते हैं। तो भगवान ने विषण मुखी जीव को दोष बताया है, इसलिए इंद्रियों का कंट्रोल करना है। हमारी इंद्रियां कैसी हैं, विषयन मुखी हैं, विषयों की तरफ हमारा मुख है। जब ये इंद्रियां निग्रह करके भगवन मुखी हो जाएंगी, उल्टा विषयन मुखी आउटसाइड, उसको कंट्रोल करके आपको अंदर लेना है। जब ऐसा हो जाएगा तब आपका काम बनेगा। तो अपने मन को भगवान के प्रेम से भर लो। अभी तक भगवान का प्रेम नहीं भरा है हृदय में, किसका प्रेम भरा हुआ है, संसार का भरा हुआ है, विषयों का भरा हुआ है प्रेम, तो उसको थोड़ा खाली करो, उसके अंदर भगवान का प्रेम भरो। तो भगवान ने सारे प्रश्न के उत्तर दे दिए, तो फिर बाकी श्लोक क्या है? बाकी श्लोक है, देखो हम लोग जब शुरू किए थे ना, तो हम लोगों ने देखा था प्रश्न को, हम लोगों ने दो डिवीजन किए थे, दो भाग में बांटा था। क्या था वो? आप कब की बात कर रहे हो? आप तो पिछले साल पढ़ा के गए थे। स्थित प्रज्ञा आपका चल रहा है तो चल ही रहा है, खत्म ही नहीं होता है स्थित प्रज्ञा। अरे स्थित प्रज्ञा में हमने देखा था एक समाधिस्थ अवस्था थी और दूसरी व्युत्थित, विशेष रूपेण उत्थित, विशेष रूप से जागा हुआ है। तो इन दोनों का प्रश्न करके अब जो है वो कहते हैं कि जो दोनों को एक साथ लेके अब चल रहा है उसके बाकी श्लोक है, कॉमन जिसको कहते हैं ना। अभी स्पेसिफिक उत्तर दे दिए चार प्रश्न के, अब कुछ श्लोक हैं जो कॉमन है, जो व्युत्थित में भी लगते हैं और समाधिस्थ में भी लग जाते हैं, ऐसे प्रश्न, ऐसे श्लोक हैं।
यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी,
यस्यां जागृति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुनेः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।
जब वेद व्यास जी ना महाभारत लिखा रहे थे तो गणेश जी लिख रहे थे। आप अगर बद्री आश्रम में जाओ ना, बद्री नारायण में, तो वहां पर एक जो है व्यास गुफा है और उसके थोड़े से नीचे में एक गणेश गुफा है। तो वेद व्यास की गुफा के अंदर आप जैसे जाओगे, आपको देखोगे कि वो सारी की सारी दीवारें अजीब ऐसी बनी हुई है कि पोथी पड़ी हुई है, अजीब तो एक के ऊपर एक किताबें रखी हुई है, ऐसी है गुफा। होता ना स्लेट बाय स्लेट बाय स्लेट बाय स्लेट स्लेट बाय, वो ऐसा बना हुआ है गुफा, वैसी है। तो ये कंडीशन थी वेद व्यास जी की, मैं बोलूंगा और तुम समझ के लिखोगे, अगर समझ में नहीं आया तो तुम बैठ जाओगे, लिखोगे नहीं। गणेश जी को ऐसा ऑर्डर दिया था वेद व्यास जी ने। अब वेद व्यास जी को अब इतने श्लोक लिखने हैं महाभारत में, 100,000 है श्लोक, तो उनको भी तो आगे सोचना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि उनको मुखस्थ सब कुछ है, सोचना है कुछ। तो बीच बीच में जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग श्लोक डाल देते थे, कंफ्यूजिंग श्लोक डाल के वो गणेश जी सोचते ये क्या हो गया, ये क्या बोल दिया है। तब तक जो है वेद व्यास जी अपना आगे का सोच लेते थे कि हमको क्या करना है। जैसे उन्होंने लिखना शुरू किया, खत्म कर दिया गणेश जी ने, फट से शुरू कर दिया। यहां पर भी भगवान ऐसा ही एक श्लोक बोल रहे हैं। अर्जुन संभवतः अनमनस था जब ये श्लोक बोला गया, और जैसे उसने सुना बोला अरे क्या बोल दिया भगवान ने। तो यहां भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम, या निशा, निशा मतलब रात्रि, जो सर्वभूतों के लिए सबके लिए जो रात है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागता है। समझा है कुछ? या निशा सर्वभूतानाम, जो सब भूतों के लिए रात्रि है उस समय संयमी जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, और जब सारे मनुष्य जागते हैं तब क्या करता है? सा निशा पश्यतो मुने, मुनि उसको रात्रि की तरह देखता है। पश्यतो का मतलब यहां पर है जो तत्व और परमात्म तत्व को देखता है, ऐसा मुनि, ऐसा मुनि जिसमें सब लोग जो है जब जागे रहते हैं वो मुनि क्या देखता है? बोले तो रात है। तो स्थित प्रज्ञ कौन है भाई? जो रात में जागता है और दिन में सोता है, ऐसा कौन सा क्रीचर है? उल्लू है। देर पर उल्लू स्थित प्रज्ञ है ना। या निशा सर्वभूतानां, जिसमें सब भूत लोग सब लोग सोते हैं, तस्याम जागृति संयमी, संयमी उसमें जागता है। जब हम सोते रहते हैं तो उल्लू जागता रहता है, इसलिए उल्लू स्थित प्रज्ञ है। यस्याम जागृति भूतानी, जिसमें सब भूत लोग जागे हुए हैं, उसमें सा निशा पश्यतो मुने, पश्यतो मुने पश्यत में तब जो तत्वित है, जिसको आत्मज्ञान है, ऐसा मुनि उसको रात्रि के समान देखता है। तो आपने पहला उत्तर तो दे दिया भाई उल्लू है, मगर हम तो मनुष्य की बात कर रहे हैं। संयमी और मुनि उल्लू तो नहीं हो सकता, मनुष्य होगा। तो मनुष्य होगा तो फिर किस टाइप का मनुष्य होगा वो?
विषय के समय जागृत नहीं, विषय में नहीं।
रात को कौन जागता है?
चोर
जागता है। नहीं, दुनिया सोती है तो चोर जागता है। इमरजेंसी रूम डॉक्टर जागता है। वेरी गुड। नाइट वॉचमैन जागता है, दरबान जागता है। अब आजकल तो आईटी वाले सब जागते रहते हैं रात को। तो ये सब जो है स्थित प्रज्ञ है। ये सब स्थित प्रज्ञ हुए हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं निशा का मतलब क्या है। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं निशा इव निशा, इव निशा मतलब रात्रि, रात्रि की तरह, रात नहीं रात्रि की तरह है वो निशा इव। क्या है वो? तो इसका निशा का माने मीनिंग क्या होता है? निशा माने नितराम सेरते अस्याम इति निशा। नितराम ऑलवेज, नितराम सेरते, सेरते मतलब सोया हुआ है। अस्याम इति निशा, जो सदा सोया रहता है उसको हम निशा कहते हैं। तो जिसमें सब बुद्धिमान लोग सोए रहते हैं वो निशा है। देखो रात्रि के अंदर एक चीज घटती है, रात को अंधेरा हो जाता है। अब जैसे ही अंधेरा हो जाता है ना, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। आप जैसे अपने आप वो हाईवे से आते हो ना, क्या है 294 94 494 सब है ना आपका, रास्ते में बत्तियां हैं मगर दोनों साइड में बाहर में दिखाई नहीं कुछ पड़ता है। अब और थोड़ी जगह आगे चले जाओ जहां पर वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तब ऐसा भी हो सकता है यू मे मिस योर एग्जिट पॉइंट, नजर नहीं आता है। यहां तो खैर इतनी लाइट्स वगैरह हैं, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, मगर दूसरी कहीं जगह चले जाओ, इंडिया वगैरह में चले जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, अरे भूल गए यहां से घूमना था हमको। तो एक कंफ्यूजन तो होता, समझ में नहीं आता रात को, और दिन के टाइम में समझ में आता है। इसीलिए हम किसी भी नई जगह में जाना चाहते हैं ना, तो हम कभी रात में नहीं जाना चाहते, क्योंकि रात में पहुंचना खोजना मुश्किल हो जाता है। दिन के टाइम हम जाना चाहते हैं ताकि हमको लैंडमार्क नजर आ जाए, अरे यहां ये है, यहां से अब घूमना है हमको। तो गुरु जी ने अपने टॉक में इसके ऊपर में बताया कि बोले हमको एक बार ऐसे हो गया, बोले मैं टोरंटो में गया हुआ था, वहां पर प्रवचन था, प्रवचन करने के बाद में फिर जो है भिक्षा की प्रणाली होती है, तो आगे गुरु जी भिक्षा के लिए घर में जाया करते थे डिबोटी के लिए। बहुत दिन के बाद उन्होंने बंद कर दिया था, अब नहीं जाते थे। बोले एक सज्जन हमको अपने वहां से ले गए जहां पर प्रवचन था, वहां तो बोले आज हमारे यहां भिक्षा है, तो उनकी गाड़ियां बैठ गए। तो जब लेके गए वहां आगे, तो वो सज्जन अपने घर का रास्ता भूल गए, नहीं पहुंच पाए, और बाकी लोग जो है जिनको साथ में बुलाया था वो पहुंच गए पहले। अब ये सज्जन जो है पेट्रोल पंप पर पहुंचे कि भाई ये जगह कहां है। सच्ची घटना है ये, रात्रि का समय देखो, रात कैसा कंफ्यूजन कर देती है, नहीं समझ में आता है। जब पहुंचे तो वो लोग सब खड़े हुए थे अभिनंदन करने के लिए, जिनको बुलाया था वो सब पहले पहुंचे हुए थे, और गुरुजी और वो जो है बहुत देरी से पहुंचे। तस्याम परमार्थ तत्वम लक्षणायाम अज्ञान निद्रा प्रबुद्ध है, अज्ञानी परमार्थ तत्व को नहीं देख पाते हैं, अज्ञानी परमार्थ तत्व को नहीं देख पाते हैं, वो उसकी तरफ सोए हुए हैं। अज्ञानी परमार्थ तत्व आंख खुली हुई है मगर परमार्थ तत्व नहीं देख पाता है। जागृति संयमी, यहां पर देखो जागृति जो पहली लाइन में है और जागृति दूसरी लाइन में है, दोनों की उसका स्पेलिंग डिफरेंट है। जागृति है सिंगुलर, जागृति है प्लूरल। देखो दूसरी लाइन में लिखा हुआ ना ऐसा, श्याम जागृति भूतानी, भूतानी मतलब प्लूरल, वहां जागृति जो है प्लूरल है। और पहला तस्यम जागृति संयमी, संयमी मतलब एक आदमी एक व्यक्ति, सिंगुलर है संयमी, इसलिए वहां पर जागृति आया। तो जागृति संयमी, तो संयमी जो है वो तत्व के प्रति पूर्ण रूप से जागा हुआ है, पूर्ण रूप से जागा हुआ है। और अज्ञानी, अज्ञानी उस तत्व के प्रति सोया हुआ है। बहुत अच्छा। यस्यम जागृति भूतानी सानि सा पश्यतो मुने, अब जिसमें सब लोग जागे हुए हैं वहां पर मुनि सोया हुआ है। आ हम लोग किसमें जागे हुए हैं, हम लोग जागे हुए हैं संसार के प्रति, लेन देन कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भाव है यहां पर, ग्राह्य ग्राहक का भाव है, मैं ग्रहण कर रहा हूं, वस्तु जो है ग्राह्य है, लेन देन चल रहा है, संसार है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो हम उसके प्रति जागे हुए हैं। और मुनि, मुनि उसके प्रति सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? क्योंकि मुनि को मालूम है कि ये जागृत अवस्था भी सपनावस्था है। हम लोग जब स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न के अंदर हम लोग को सब कुछ सत्य लगता है, जब तक हम स्वप्न देखते रहते हैं। स्वप्न से जैसे ही जागृत में आते हैं तब हमको पता लगता है कि वो स्वप्न असत्य है, मिथ्या है, मगर जब तक स्वप्न देख रहे थे तब तक सच लग रहा था। और जो मुनि जो जाग चुका है, जो पश्यति जो तत्व को देख रहा है, उसके लिए तो जागृत अवस्था भी स्वप्न है। वो कहता है तो सपना चल रहा है, वो तो गॉड कॉन्शियस स्टेट में पहुंचा हुआ है। जैसे स्वप्न अवस्था से आप जागृत में आते हो तब आप कहते हो कि वो सपना अवस्था मिथ्या है, उसी तरह से जब जागृत अवस्था से आप गॉड कॉन्शियस स्टेट में आ जाओगे तब आप बोलोगे कि ये जागृत अवस्था भी स्वप्न है। तो ज्ञानी कैसे देखता है कि जिसमें आप सब लोग जागे हुए हो, बोले ये भी स्वप्न है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जागृत और स्वप्न को बहुत महत्व देते हैं। बहुत लोग प्रश्न करने आ जाते हैं स्वप्न में, 4 बजे हमने ये देखा, लो अरे 4 बजे देखा कि 3 बजे देखा, क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई तो स्वप्न था। अच्छा, तो अब इसमें से निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला, स्थित प्रज्ञ तत्व के प्रति जागा है और अज्ञानी तत्व के प्रति सोया है, जागृत नहीं है। नंबर 2, अज्ञानी ज्ञानी की दुनिया को नहीं जानता। देखो ये बड़ी अच्छी बात है, अज्ञानी जो है ज्ञानी की दुनिया को नहीं जानता है, क्योंकि ज्ञानी जो है पहुंच चुका वहां ना, मगर ज्ञानी अज्ञानी की दुनिया जानता है क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, वो भी एक टाइम अज्ञानी था ना, उसके पास भी जागृत और स्वप्न अवस्था थी, अब वो स्थित प्रज्ञ हो गया है। इसलिए अज्ञानी ज्ञानी की अवस्था नहीं जानता है, गॉड कॉन्शियस स्टेट में, वो किस स्टेट में बैठा हुआ है वो अज्ञानी को नहीं पता है, मगर ज्ञानी को अज्ञानियों के बारे में सब पता है, क्योंकि उस रास्ते से वो गुजर चुका है, उसको मालूम है जागृत अवस्था क्या है, सुसुप्ति अवस्था क्या है। और तीसरा चीज है, अज्ञानी जो है देहाभिमानी है, देहाभिमानी है, उसमें अनात्मनी आत्मबुद्धि है। अनात्मनी आत्मबुद्धि मतलब अनात्मा उसके लिए आत्मा है, अनात्मा उसके लिए आत्मा है मतलब देह उसके लिए आत्मा है, परिवार उसके लिए आत्मा है, विषय उसके लिए आत्मा है, छोड़ता नहीं है विषय को। देखो कैसे होता है, उसकी कैसी आत्मा है। मान लो आपका मकान है, अब आपकी आत्मा कैसे उस मकान में फंसी हुई आपको बताते हैं। अगर उस मकान में अगर मान लो कहीं से खिड़की टूट गई, कहीं क्रैक कर गया, छत लीक करने लगी, अब बताओ आपकी कैसी अवस्था होती है, क्योंकि आपने उसको आत्मा माना हुआ है। बच्चों को तो आप बहुत अच्छा आपको समझ में आता होगा, बच्चे बीमार है तो आप बीमार हैं, बच्चे खुश हैं तो आप खुश हैं, ये तो आप लोग का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ना। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे आपकी आत्मा है। उसी तरह शरीर से भी होता है। तो इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ क्या है, वो रात्रि है, और ये रात्रि बहुत भयानक है। जब तक आप अज्ञान में रहोगे तब तक आपकी रात्रि चल रही है, रात्रि में कंफ्यूजन चल रहा है, आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, और ये रात्रि बहुत भयानक है। तो जागृत और स्वप्न अवस्था अज्ञानियों की रात्रि है, और जिसने परमार्थ तत्व को पा लिया वो जागा हुआ है। तो ज्ञान के पूर्व जो है संसार सत्य लगता है, ज्ञान के पूर्व संसार सत्य लगता है, ज्ञान के बाद यही संसार असत्य लगता है, ब्रह्म सत्य लगता है और संसार असत्य लगता है, और ज्ञान के पूर्व संसार सत्य लगता है और ब्रह्मन असत्य लगता है। क्यों असत लगता है, दिखाई नहीं पड़ता है ब्रह्मन, इसलिए असत है। प्रत्यक्षवादी जो कहते होते हैं ना, वो बोलते दिखाओ, आपको रास्ते में बहुत आदमी मिलेंगे। वो कई बार जो है स्वामी और संतों को और आचार्यों को पूछते हैं, अच्छा आप क्या करते हो, चिन्मय मिशन से हो, अच्छा ठीक है, मेरे को एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आप लोग कहते हो भगवान है, अगर है तो हमको दिखाओ, दिखाओगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, आप मान लो भगवान नहीं है। हम लोग कहते हैं मान लिया भगवान नहीं है, क्योंकि हम आपको भगवान के दर्शन जो है, ब्रह्मन के दर्शन या आत्मा के दर्शन नहीं करा सकते। तो प्रत्यक्षवादी जो है भगवान को तो मानता नहीं है, नहीं लाओगे नहीं दिखाओगे हमें ब्रह्मन या आत्मा तो हम मानेंगे नहीं, और उसको हम किसी तरीके से भी नहीं ला सकते सामने में। तो स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा यह है कि वो तत्व के प्रति जागा हुआ है, संसार को रियलिटी नहीं देता। हम लोग सब संसार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि स्थित प्रज्ञ होने के बाद में आपको संसार नजर नहीं आएगा, संसार नजर आएगा, ज्ञानी संसार में घूमेगा भी, उसके साथ ट्रांजैक्शन भी करेगा, मगर वो सदा ये सोचता रहेगा कि ये सारा का सारा जो है रियल नहीं है, इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई दरकार नहीं है। जगत रहेगा, ज्ञानी का शरीर भी रहेगा, वो जगत से ट्रांजैक्शन भी करेगा, मगर वो मन में जानता है कि ये संसार रियल नहीं है। और अज्ञानी क्या जानता है, ये संसार रियल है, बहुत ज्यादा महत्व देता है, इसीलिए वो ज्यादा दुख पाता है। अच्छा, अब पहुंचने का उपाय क्या है, तो पहुंचने का उपाय भी इसी श्लोक में लिखा हुआ है। क्या संयमी और मुनि, नंबर वन संयमी बनो उसके बाद मुनि बनो। देखो एक ही श्लोक के अंदर सब बता दिया, संयमी बनो, सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर करो, कंट्रोल करोगे तभी तो आप दूसरी तरफ चल पाओगे, समय निकालोगे तब तो अध्यात्म पढ़ोगे, समय निकालोगे तब तो सत्संग में जाओगे। तो पहले संयमी बनो। तो संयमी कैसे बने, सेम एग्जाम्पल, यदा संगर्ते चायम कुर्मांगानीव सर्वसह, जैसे कुर्मांग अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही आपको करना है, वैसे ही करना है। अब मुनि, मुनि कौन है, देखो मुनि का भी श्लोक आगे आ चुका है, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। तो मुनि कौन है, जो दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख आया ठीक है, दुख आया ठीक है, कौन दुखी हो रहा है, मेरा शरीर और मन दुखी हो रहा है, मैं कौन हूं, हम तो चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मन है हम तो, शरीर तो मेरा शरीर है, मेरा शरीर का मतलब थोड़ा मैं थोड़ी ना हो गया, मेरा कुत्ता, क्या मैं कुत्ता हो गया, माई डॉग, आई डोंट बिकम डॉग, मेरा शरीर, लो अब कुत्ते के टाइम में ठीक समझ में आता है, मेरा कुत्ता, लो ठीक है मेरा कुत्ता मेरे से डिफरेंट है, अब फिर मेरा शरीर जब आ गया तब बोलते नहीं 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 शरीर, शरीर मेरा है, शरीर इज आत्मा। तो ज्ञानी ये जानता है कि शरीर से मैं भिन्न हूं, तकलीफ शरीर को आई है ठीक है, शरीर भोगे मैं नहीं भोग रहा। तो पहले संयमी बनना है, फिर मुनि बनो, उसके बाद में आप ज्ञानी बनो। देखो कुछ लोग संयम करते हैं मगर आत्मज्ञानी नहीं होते, हाफ प्रोसेस किया, गीता पढ़ ली, पढ़ने के बाद में आपने संयम शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू किया, आत्मज्ञान नहीं लिया, दोनों एक साथ करना होगा ना आपको। जैसे ही संयम किया, संयम करने के बाद में जो एनर्जी सेव की उसको तो यूटिलाइज करना है ना आत्मज्ञान। कुछ लोगों ने कहा नहीं संयम की दरकार नहीं, पहले आत्मज्ञान पढ़ लेते हैं, संयम बाद में देखेंगे, आत्मज्ञान पढ़ लिया संयम नहीं करता है, संयम नहीं करता मतलब ओईटी में घूम रहा है अभी भी, आत्मज्ञान ही ओईटी में घूम रहा है, तो दोनों में ही आपका काम नहीं बनेगा। तो आत्मज्ञानी बनने के लिए आपको क्या करना होगा, संयम भी करना पड़ेगा और मुनि भी बनना पड़ेगा। और ज्ञानी, ज्ञान के पश्चात क्या होता है, त्रिगुणातीत हो जाता है और त्रिगुण से बनी सृष्टि से अतीत चला जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। देखो सृष्टि में परिवर्तन आता रहेगा, चेंज होते रहेंगे, मगर ज्ञानी जानता है कि ये सृष्टि से मैं दूसरा हूं, सृष्टि सब माया की है, मेरा शरीर भी माया का बना हुआ है मगर मैं ये शरीर नहीं हूं। उसको ये मालूम है कि ये शरीर भी एक दिन जो है वो चेंज होता रहता है और नाश भी होगा, ये भी मालूम है उसको। ऐसा नहीं कि ज्ञानी का शरीर लगा बना रहता है, अरे ज्ञानी की बात छोड़ो, भगवान कृष्ण भगवान राम का भी शरीर नहीं रहा, तो हम कौन सी खेत की मूली है, तो जाएगा ये, तो अभी से हमें विचार करना चाहिए। सो जो मुनि का दिन है वह दूसरों की रात्रि है। मुनि का दिन कौन सा है, वो तत्व के प्रति जागा हुआ है, मुनि जो है तत्व के प्रति आत्मज्ञान के प्रति जागा हुआ है, आत्मा के प्रति जागा हुआ है, और सारी दुनिया उसके प्रति सोई हुई है। और जिस तरफ सारी दुनिया जागी हुई है ओईटी की तरफ, उस तरफ मुनि सोया हुआ है। देखो समझ में आए आपको ठीक, जिस तरफ सारी दुनिया जागी हुई है ओईटी की तरफ, संसार की तरफ, ट्रांजैक्शन की तरफ, जहां पर ईगो है, जहां पर लेन देन चल रहा है, उसके तरफ ज्ञानी जो है सोया हुआ है, उसको उतना महत्व नहीं देता है। और वो कहाँ जागा हुआ है, वो तत्व के प्रति जागा हुआ है। और संसारी संसारी संसार के प्रति जागा हुआ है और तत्व के प्रति सोया हुआ है। अब आप देखो, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानाम, तत्व के प्रति सारी दुनिया सोई हुई है और तत्व के प्रति संयमी जागा हुआ है। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतोमनी, और जिसके प्रति सारी दुनिया जागी हुई है, सा निशा वो रात्रि है, किसके लिए? पश्यतो मुनि, पश्यतमे तत्वज्ञानी मुनि, तत्वज्ञानी मुनि उसके प्रति सोया हुआ है, ये भाव यहां पर है। गुरुजी ने हम लोग को बताया था कि द्वैत प्रपंच शून्यत्वे सति ब्रह्म तत्व तृप्तम स्थित प्रज्ञम लक्षणम। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? बोले दो लक्षण है। पहला है द्वैत प्रपंच शून्यत्वे सति, उसके लिए द्वैत प्रपंच, द्वैत जो है ड्युअलिटी प्लुरलिटी शून्य है, और ब्रह्म तत्व तृप्तम, ब्रह्म तत्व में वो तृप्त है। आपको जो श्लोक याद होगा, प्रजाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मने आत्मना तुष्ट, आत्मने आत्मना तुष्ट। तो केवल आप अगर मान लो द्वैत प्रपंच को शून्य कर लिया और आत्म तत्व के प्रति आप जो है नहीं जागे हैं या उससे तृप्त नहीं है, तो आपका काम नहीं हुआ। आपको जो है प्रपंच के प्रति शून्य होना है और आत्मा के प्रति तृप्त होना है, दोनों एक साथ होना चाहिए। तो देखो पहली लाइन जो यहां पर है ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, वो वहां पर बता रहे हैं कि वो जो है ज्ञानी जो है ब्रह्म तृप्त है, तृप्त है उसमें। और दूसरी में यस्याम जागृति भूतानी सा निशाम पश्यतो मुने, उसके अंदर वो द्वैत प्रपंच को अदृक्तम देख नहीं रहा है, द्वैत प्रपंच के प्रति ज्ञानी जो है सोया हुआ है और आत्म तत्व के प्रति जागा हुआ है। ये है हमारा 69th श्लोक। तो अभी तक हम लोगों ने स्थित प्रज्ञ के क्या क्या लक्षण देखे हैं? तो पहला लक्षण हमने देखा आत्मसंतुष्टि देखा है, दूसरा लक्षण है कि वो ब्रह्म में रमन करता रहता है, उसके सेंस और माइंड ब्रह्म में रमन करते हैं, वो बाहर देखता है, वो 5-star होटल में जाता है, मगर उसका मन कहाँ लगा हुआ है? जो आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है, उसका मन ब्रह्मन में लगा हुआ है। तीसरा, सुख के लिए बाह्य वस्तु पर वो निर्भर नहीं रहता, कामना रहित है। चौथा, उसका व्यवहार सुख और दुख में सम है, इक्विपोइज्ड है। पांचवा, वो असंग है। छठा, वो संयमी है। सातवां, इंद्रियां ऑब्जेक्ट में जाती हैं मगर उसमें वासना नहीं है, उसमें रस नहीं है। देखो आपको रस वर्ड याद है ना, हाँ, क्या एग्जाम्पल था रस का? कचौरी एंड पकौड़ी, रस नहीं है। तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया, साधक को संयमी होना है, मुनि बनना है, उसके बाद में ज्ञानी होना, ये आपका तरीका है, ऐसा करना है आपको। अब प्रश्न आता है कि जो ज्ञानी है उसके पास में क्या सेंस ऑब्जेक्ट नहीं आते? क्या ज्ञानी के पास में शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं आते? क्या वो उससे प्रभावित होता है? हम गुरुजी को अच्छा भोजन देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जितने लोग मिलने आते हैं उतनी चीजें लेके आते हैं, तो क्या गुरुजी प्रभावित हो जाते हैं? अगर नहीं होते हैं तो कैसे नहीं होते हैं? हम प्रभावित हो जाते हैं, वो क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? स्थित प्रज्ञ या ज्ञानी क्यों नहीं प्रभावित होता है? ये इसके बाद वाला श्लोक पढ़ते हैं।
आपूर्यमानं अचल प्रतिष्ठं आपूर्यमानं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमानं अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
देखो स्थित प्रज्ञ की मन की स्थिति फिर बताई जा रही है। सारे के सारे श्लोक जो है स्थित प्रज्ञ के मन के बारे में बताए गए हैं। एक भी श्लोक आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसके अंदर उसकी बाह्य स्थिति के बारे में बताया गया है कि उसके चेहरे पर ग्लो आ जाता है कि बाह्य रूप उसका ऐसा होगा, कुछ नहीं बताया है। 80 साल का बूढ़ा भी जो है 40 साल का लगेगा, ऐसा नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया। सब भीतर की स्थिति, मन की स्थिति बता रहे हैं कि उसके मन के अंदर कैसा बदलाव आया है। तो कहते हैं आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशंती यद्वत्। प्रविशंती यद्वत् मतलब समुद्र के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। क्या प्रवेश करता है? नदियां जो है पानी ला ला के समुद्र में डालती जा रही हैं। और समुद्र कैसा है? आपूर्यमानम फुल टू द ब्रिम। नदियां पानी ट्रिलियन ऑफ गैलन डालती जाती है मगर 1 सेंटीमीटर ऊपर नहीं जाता पानी। कभी देखा नहीं आता। आपूर्य मान अचलम प्रतिष्ठम, अचल डीप डाउन गंभीर है एकदम, उसमें कोई विकार नहीं है, अचल एकदम, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। बल्कि जो भी पानी आता है, मीठा पानी आता है कि गंदा पानी आता है, उसको वो खारा पानी बना देता है तुरंत। एवरीथिंग बिकम सॉल्टेड वाटर। जैसे ही नदियों का पानी समुद्र में घुसा वो खारा बन गया। और दूसरा अचल प्रतिष्ठा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इतना पानी आता है फिर भी कोई बदलाव नहीं होता है। अच्छा कल को नदियां यूनियन बना ले, पानी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये हमारा मीठा पानी को खारा कर देता है एक नंबर। और दूसरा हमारा गंगा यमुना का नाम नहीं रहा, सब कहते हैं समुद्र है वो। जैसे ही मिक्स हो गया अब वो तो ये नहीं कहते ना कि ये पानी अब ये गंगा का पानी है, ये इसका पानी है, सब एक हो गया। कोई भेदभाव नहीं है। और बहुत अच्छा, तो अगर वो पानी ना दें तब भी समुद्र फुल टू द ब्रिम उतना ही रहेगा, अगर दे भी तब भी उतना ही रहेगा। समुद्र जो है नदियों पर डिपेंडेंट नहीं है, नदियां पानी डालने के लिए समुद्र पर डिपेंडेंट है। बहुत अच्छा। देखो जब तक वो आत्मसार हो जाता ना, एक हो जाता है, फिर जो है बोझ बोझ नहीं लगता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। आप जैसे आप कल निकलोगे सवेरे काम के लिए, कई आदमी सोचता है कि भाई अपना भोजन ले चलें, सब बाहर जगह सब नॉनवेज मिलता रहता है, अपना घर से भोजन लेके चलो। आप भोजन लेके चले, चलते चलते कुछ देर तक आप थक जाओगे, अरे क्या टिफिन कैरियर लेके घूम रहे हैं, भारी लग रहा है। चलो बैठ जाते हैं, पार्क में बैठते हैं, खा लेते हैं। अब बाकी सब थैली वैली सब उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब बताओ जो भोजन खा लिया वो आत्मसार हो गया, अब वो आपको बोझ लगता है क्या? अब बोझ नहीं लगता है, अब नहीं बोझ लगता, आत्मसार है। और जब तक पेट के अंदर है तब तक वो आत्मसार है, जैसे ही वो बाहर निकल गया अब आप उसको न देखना चाहते हो न छूना चाहते हो, क्योंकि अब आत्मसार नहीं है। जब तक आत्मसार था ठीक था, भोजन बाहर था तब बोझ था, जैसे ही खा लिया आत्मसार हो गया, मैं एक हो गया। उसी तरह से वो पानी जितना की जितना होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझना, ये अभी और डिस्कस करना है इसमें। आत्मसार हो गया, एक हो गया, अब चेंज नहीं है। तो उसी तरह नदियों का पानी जब समुद्र में मिलता है तो आत्मसार हो जाता है, पानी जो मीठा था वो खारा हो गया, आत्मसार हो गया, अब उसकी विशेषता नहीं रही, मीठापन नहीं रहा, एक हो गया। उसी तरह से कहते हैं तद्वत कामा या प्रवशंती सर्वे, उसी तरह सारी कामनाएं, यहां काम का मतलब है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, सब उसके पास आते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आते हैं और बहुत तादाद में आते हैं। तो क्या उसको फर्क पड़ता है? बोले नहीं, बहुत सेंस ऑब्जेक्ट आते हैं। हम आपको चिन्मय मिशन का एग्जाम्पल देंगे, गुरुदेव के पास में, गुरुजी के पास में, हर स्वामी के पास में, हर आचार्य के पास में बराबर कुछ ना कुछ आता रहता है, बराबर आता रहता है, कंटिन्यूअस आएगा। क्यों नहीं प्रभावी होता है? क्योंकि आत्मसार हो जाता है। कैसे आत्मसार हो गया? क्या साइंस है उसके पीछे में? विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है, वो जानता है कि मैं ब्रह्म हूं और दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब के सब ब्रह्मन है, मगर वो नहीं जानते, अज्ञानी नहीं जानता है कि वो ब्रह्मन है, मगर ज्ञानी है वो क्या जानता है? अरे वो सब तो वो आत्मा है और एकक रूप लेके बैठा हुआ है, होल वर्ल्ड इज नथिंग बट लॉर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स ओनली, और वस्तुएं वो भी वही है, सब ब्रह्मन है, सब ब्रह्मन है। अब बताओ जिस व्यक्ति की ऐसी दृष्टि है कि सभी ब्रह्मन है, हर वस्तु ब्रह्मन है, और जब ज्ञानी के पास में वो वस्तु आती है, दे इंटर, वो खुद ब्रह्मन है और वस्तुएं आती हैं वो भी ब्रह्मन है, वो आत्मसार हो गई। आया समझना है? अगर आत्मसार हो गई उसके बाद फिर एक हो गया, आपूर्यमानम, वो तो ब्रह्मन एक ही है और क्या है, अब उसको फर्क कुछ नहीं पड़ता है, एक हो गया, कोई विकार नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं है। अज्ञानी को मॉडिफिकेशन होगा, मेरे पास इतना था, एक टीबी और आ गया, अब दो टीबी हो गए, ऊपर रखेंगे एक नीचे रखेंगे, ऐसा सोचेगा। ज्ञानी क्या करता है? बोलो टीबी भी तो ब्रह्मन ही है, आ गया चलो ठीक है, कल उठा के फिर दूसरों को पकड़ा देगा, ले जाओ। स शांति मापनोती न काम कामी, उसे केवल शांति मिलती है न काम कामी को। क्यों शांति मिलती है? क्योंकि सब आत्मसार हो गया, उसकी सारी दृष्टि ब्रह्मन की तरह है, मैं ब्रह्मन हूं और सारी दुनिया की वस्तुएं, सारी दुनिया के विषय और व्यक्ति बीइंग सब ब्रह्मन है, आ रहे हैं, ठीक है, आत्मसार, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसे शांति मिलती है। और दूसरे को मिल जाए तो आप लोग को अशांति हो जाएगी, स्टार्ट जंपिंग, एक लॉटरी मिल जाए उसका देखो आप कितनी पार्टी देते हो। आपको अगर 1 मिलियन की लॉटरी मिल जाए कितनी पार्टी दोगे आप? गुरु जी को मिलियंस मिलते हैं, कोई फर्क नहीं, ये आत्मसार, आत्मसार, आत्मसार। अच्छा कोई भक्त कहे मैं गुरु जी को देने गया था, गुरु जी ने मेरे को आशीर्वाद नहीं किया, ही डिडंट ब्लेस मी, नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम एनीथिंग, डजंट मैटर, आपूर्यमानम इज फुल, उसको नहीं चाहिए कुछ। क्या गुरुजी को चाहिए $1,000,000? ही डजंट नीड, ही कैरीज ओनली 3 सेट ऑफ क्लोथ्स। कहता आपने दिया उधर लगा दिया, उधर से आया इधर लगा दिया, सोसाइटी ने दिया सोसाइटी को वापस दे दिया, चलो। समुद्र, ये समुद्र क्या है इसको हम लोग फिर देखेंगे। समुद्र की व्याख्या बड़ी अच्छी है, समुद्र कैसा है उसको हम देखेंगे और अगले दिन हम द्वितीय अध्याय को शेष कर देंगे, खत्म करेंगे। केवल और 2 श्लोक हैं। ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।